तो आप सबका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना आमंत्र संघ मॉरिशस की ओर से आपके इस मौत्ताबा तमाकू की खेती के स्थान में जीवन जी के घर के ऊपर भगवान की कथा का आयोजन किया गया है। आप सबका स्वागत है। हम पर आपने हाथ जोड़ के हमारे पीछे भगवान का नाम का उच्चारण किया, आपको कैसे लगा, कैसा लगा? थोड़ी देर के लिए शांति है जब आपने हमारे पीछे कहा, आपको कैसे लगा? थोड़ी सी देर के लिए बहुत हल्का हो जाता है आदमी, हाँ लगता है ऐसे कि नहीं लगता है? हल्का हो जाता है आदमी। किस चीज से हल्का हो जाता है? ये शरीर का भार उसके ऊपर से उतर जाता है, क्योंकि ये तो आत्मा का अनुभव कराता है। जब ऐसे भगवान का नाम लेते हैं तो शरीर का भार हमसे उतर जाता है, क्योंकि ये आत्मा। अच्छा, इस बात के लिए समझाना कि कोई शब्द है ना, शब्द आप कुछ बोलोगे ना, आप जो कुछ भी बोलो उसका कुछ ना कुछ असर होता है। होता है कि नहीं होता है दुनिया में? किसी आदमी, अभी तक हम बैठे हैं, कहें ओ जलेबी खाना है। जलेबी देखा है? जानते हो जलेबी को? यू नो जलेबी? हरे कृष्णा। जलेबी का नाम सुनते क्या होगा? ओ ऐसा गोल गोल टेढ़ा रस वाला, आहा खाने में मीठा जलेबी। आप समझते जलेबी बच्चे लोग? लड्डू लड्डू समझते हैं, गुलाब जामुन रसगुल्ला, ये क्या है? शब्द नाम तो है, लेकिन नाम लेने से दिमाग के अंदर रसगुल्ला दिखता है और जबान खाने को करती है। तो कुछ मुंह से बोलते हैं तो एक आदमी बोलेगा तो दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है ना। किसी को आप कहो बहुत आप अच्छे हो, आह आपका नाम कितना सुंदर है, जीवन जी महाराज ठीक है आप, बड़ा खुश हो जाएगा ना। हा? और कहोगे हरे कृष्णा। अगर आप किसी को दो तीन गाली दे दो तो उसको गुस्सा आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? किसी को बुरा कह दो तो क्या करेगा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो जो शब्द आप बोलोगे दूसरे आदमी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं? मीठा शब्द बोलने से, प्रेम से बोलने से शांति हो जाती है, झगड़े सी बात करने से घर में झगड़ा हो जाता है। तो शब्द ही तो बोलते तब झगड़ा होता है ना, ये जबान से बोलते तब होता है ना। जब दुनिया के शब्द, जो संसार के शब्द है, उनको बोलने से हम किसी पराये को अपना बना सकते हैं, प्रेम के द्वारा उसको अपना बना सकते हैं और किसी अपने को दुश्मन बना सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो ब्रह्म शब्द है, जिनके उच्चारण करने से हम भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं। ये हम जो शब्द बोल रहे हैं, जो हमने आपने उच्चारण किया हमारे पीछे, इनको बोलते हैं ब्रह्म शब्द। ये संसार का शब्द नहीं है, ये ब्रह्म शब्द है। संसार का शब्द भी संसार में बहुत बड़ा काम करता है, करता है कि नहीं करता है? एक बार जबान और दांत के बीच में झगड़ा हो गया। दांत बोलते हम 32, बाहर सिपाही खड़े हैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम अंदर माल खाती है। जीभा ने बोला ये तुम चमक रहे हो ना बाहर, ये कोलगेट पेस्ट के ऊपर जैसा फोटो है चमकने वाले दांत का, ये हमारी वजह से है। जीभा बोलती है ये हम है तब तुम हो, ये हमारी कृपा से है, तुम क्या करोगी? जीभा, अरे हमारे दांत के में बीच में आ जाती हो तब तो चिल्लाती हो, दांत में जीभ आती है ना कभी कभी तो दर्द होता है ना, अरे बोला हम तुमको काट दें तो। जीभा बोले तुम अपने हो इसलिए हम कुछ नहीं कहते, आप समझो आप नहीं हमारी रक्षा कर रहे हो। जीभा बोला हम आपकी रक्षा करते हैं। दांतों ने बोला नहीं होगा, बोला देखना है, तुम देखना चाहते हो? बोला बोलो। एक पहलवान जा रहा था, जीभा ने उसको गाली दे दी और पहलवान एक मुक्का इधर मारा, 5-7 दंत नीचे गिर गए। जीवा ने बोला बताओ जरा कौन किसकी रक्षा करता है, जीवा करती है कि दांत करता है, कौन करता है? जीवा करती है, दांत नहीं करता है, जबान करती है। जबान तेरी बोलो दांत दो तीन नीचे गिरा देगा दूसरा आदमी। इसलिए इस जीवा के लिए एक महात्मा संत कहते हैं, जीभा तो तब लग भली, जीभा तो तब लग भली जब लग जपई राम। तभी जीभा अच्छी है अगर भगवान राम का नाम ले, नहीं तो काट कर फेंकिए भला नहीं मुख में चाम। चमड़े का टुकड़ा मुख में रख के क्या करोगे, निकाल के बाहर फेंक दो। चमड़े का टुकड़ा समझते हो, यहां कोई चमड़ा बाहर गिरा हो कोई मुंह में डालेगा क्या? नहीं डालेगा ना, तो ये चमड़ी का टुकड़ा ही तो है और क्या। अरे राम नहीं जपती है तो निकाल के फेंक दो, ये तो राम जपने के लिए है। ये कैसी है आपने देखा है इसको, ये चटोरी कैसी है, ये उन्होंने तो लाखों मन माल खाया है। कितना खाया है, हलवा पूरी सब्जी ये कितना माल खाया है, कुछ भी इसको खिलाओ थोड़ी देर के बाद ऐसे की ऐसी, कुछ चुपड़ापन इसके ऊपर नहीं है। कितना घी खा गई है, कितना चीनी खा गई है, गन्ने का माल सारा खा गई, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ गया, ऐसे की ऐसे पड़ी। इस जीभा के द्वारा आप संसार में दुखी भी हो सकते हो और सुखी भी हो सकते हो, यह आपका हथियार है। वैसे भी स्त्री का सबसे बड़ा हथियार तो जीभा है, ऐसी तेज चलाती है चाकू छुरी की तरह, क्या बात है। सबसे अच्छा हथियार जो स्त्री के पास है वो ये जीभा है। क्या बात है, नहीं ऐसा टेढ़ा वेढ़ा बोल दे तो घर में दो दिन खाना पीना बंद हो जाए। तो जीभा ही तो है और है क्या। तो ये जीभा से आप सुख भी प्राप्त कर सकते हो, जीभा से आप भगवान भी प्राप्त कर सकते हो, और जीभा से संसार में दुखी होकर झगड़ा करके और कष्ट उठा सकते हो। अब आप अपनी जीभा को किस काम में लगाना चाहते हो बताओ। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं जीभा की तपस्या, वाणी की तपस्या क्या है। वाणी की तपस्या है मीठा बोलना। मीठा बोलने का मतलब चीनी खाकर बोलना, रसगुल्ला खाकर फीला बोलना। एक आदमी ने बोला बोला तो मीठा बोला कर, बोला पहले मेरे को मिठाई ला के दो खाऊं फिर बोलूंगा फिर मीठा होगा। हाँ मिठाई के खाने से मीठा नहीं होता है। मीठा बोलने का मतलब दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सच भी हो और किसी का दिल दुखाने वाला हो तो नहीं कहना चाहिए। एक कथा बता दो, भगवान श्री कृष्ण इस धरती के ऊपर भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर आते हैं, क्योंकि भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। और जब काम खत्म हो जाता है तब वापस अपने धाम चले जाते हैं। न भगवान का जन्म होता है न भगवान का मरण होता है। जैसे सूर्य सुबह उगता है और शाम को अस्त हो जाता है, ऐसे जब अंधकार होता है तो भगवान प्रकट होता है, प्रकाश देते हैं, और जब काम खत्म हो जाए तो भगवान वापस चले जाते हैं। तो भगवान का जन्म और मरण नहीं होता, भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव होता है, आना और जाना। जैसे हम अभी आए, आपने यहां बुलाया सत्संग के लिए, ये हमारे आपके इस पड़ोस के हैं, हाँ ये रास बिहारी जी, ये हमारे रास बिहारी ब्रह्मचारी, ये तो आपके इस इलाके का है ना, मोलताबा का है ना, मोलताबा का इधर इसके भाई का घर है ना, इधर एक, एक, एक क्या हम उनके घर में गए थे, क्या नाम, गौतम जी के घर पे गए थे, और दूसरे भाई भी इनके बाबा जी के घर पे गए थे। तो ये आपके पड़ोस के है ना, हरे कृष्ण। इन्होंने बुलाया जीवन जी के घर पे आना है, तो हम आ गए। थोड़ी देर के बाद कथा सत्संग समाप्त हो जाएगा, हम वापस चले गए जाएंगे, तो आप कहेंगे कि महाराज ने जन्म लिया यहां और अब महाराज मर गया, ऐसे बोलोगे? हाँ मैं आया यहां तो आप कहेंगे महाराज का जन्म हो गया, चलो घंटी बजाओ महाराज का हैप्पी बर्थडे महाराज। और कथा होगी हम यहां से जाएंगे बोला राम नाम सत्य है महाराज का हो गया, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं, आपने बुलाया हम आया, काम खत्म हो गया, कथा खत्म हो गया, हम वापस चला जाएगा अपने मंदिर में। तो मेरे आने को कोई ये थोड़ी कहेगा कि मैं अभी पैदा हुआ हूं, रोता हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं वहां हुआ तो नहीं कर रहा हूं ना, अभी पैदा थोड़ी हुआ। तो ऐसे भगवान तो अपने आनंद में अपने लोक में बैठे होते हैं, जब भक्त उसको बुलाते हैं कि आ जाइए भगवान हमारे को बहुत बड़ी कष्ट हो रहा है आप हमारी रक्षा कीजिए, तो वो चले आते हैं, और जब काम होता है फिर वापस चले जाते हैं। तो भगवान का आना और जाना ऐसे, तो भगवान जब चले गए तो भक्तों को बहुत दुख होता है। आपके घर में कोई बहुत प्रेम करने वाला आपका सगा संबंधी मेहमान आ जाए, ये 15 दिन महीना रह जाए, फिर जाता है तब रोना आता है ना, जब उसको छोड़ने जाते हैं, हाँ उसको जब छोड़ने जाते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, चला जा रहा है, इतने दिन हमारे साथ रहा था। और सबसे ज्यादा रोना कब आता है? जब लड़की का विवाह करके और उसको भेजते हैं ससुराल, तब रोना आता है ना, आता है कि नहीं आता है? जब बच्ची जाती है घर अपने ससुराल तब रोते हैं ना, या रोते हैं कि नहीं रोते हैं? रोते हैं ना, क्योंकि जिसको हम चाहते हैं उससे हमारी जब जुदाई होता है तो रोना आता है। तो भगवान जब चले गए तो भक्तों को बहुत दुख होता है, अरे हमारे प्राणनाथ चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण तो अपने लोक चले गए थे, और ये समाचार उद्धव जी ने विदुर जी को दिया था। उद्धव भगवान का बहुत महान भक्त है, और दूसरा भक्त भगवान का विदुर जी है। आप जानते हैं ये नाम दो आपको आते हैं ना, विदुर जी को उद्धव ने बताया भगवान चले गए। उद्धव हस्तिनापुर में आए, महाराज युधिष्ठिर उस वक्त में विश्व का राजा था, सम्राट था पूरे विश्व का, एक छत्र राजा था, चक्रवर्ती राजा था, और पांडव भगवान श्री कृष्ण के बहुत स्नेह करने वाले भक्त हैं, बड़ा प्रेम करने वाले भक्त हैं। जब विदुर वहां आया तो विदुर ने सोचा ये दुख की खबर है कि भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं, अगर मैं इनको बोलूंगा तो इसको दुख होगा ना, मुझे मालूम है लेकिन मैं इनको बोलूंगा नहीं, ये दुख की खबर अपने आप इनको आ जाके पहुंच जाएगी, तब ये रोए, अभी कह के लिए मैं इनको रोने के लिए मुसीबत में डालूं। तो हम बात ये कर रहे थे कि दुख की खबर सच्ची भी हो तो दूसरे को तकलीफ न पहुंचे, आपको बताने की जरूरत नहीं, वो खबर अपने आप आ जाएगी। मीठा बोलने का अर्थ है कि कहीं देखो कि किसी को चोट लग जाएगी हमारे इस कहने से, तो जबान से चुप रहना ही अच्छा है, नहीं बोलना अच्छा है। हित के लिए बोलो, दूसरे का फायदा है तो बोलो, दूसरे का है लाभ है तो बोलो, कहीं गाय भाग के जा रही थी, पीछे कसाई आ रहा था, महाराज ध्यान में अपने मंदिर में बैठा था ब्राह्मण, कसाई ने पूछा गाय देखी? उसने इशारा किया, बोला तो सच लेकिन उसके ऊपर अपराध हो गया गाय के हत्या का, उसको चुप कर रहना था, गाय देखी पता नहीं, आंख ने देखी होगी हमको मालूम नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है आंख ने देखी हो लेकिन हमको मालूम नहीं। कई चीजें आप आंख से रोज देखते हैं, आपको मालूम है क्या? आज सुबह से आप काम पे गए ना, शहर में गए थे घूमने, कितने लोगों को देखा, रोड के ऊपर कितनी गाड़ियां देखी, सबके नंबर याद है, सबके नाम याद है, तो बोलो आंख ने देखा है हमको पता नहीं, ये बहुत आसान है ना, झूठ थोड़ी बोल रहे, कितनी चीजों को हमने देखा, हम आप सबको देख रहे हैं, किसी को जानते तो है नहीं, ये इसको जानते हैं, ये बैठा है हमारा, ये हमारे साथी है, हमको जानते हैं, ये किशन है इनको जानते हैं, वो सुदर्शन है उसको जानते हैं, लेकिन आप सबको हम देख रहे हैं, कोई बोले उसको देखा, हो सकता है आंख ने देखा है हमें पता नहीं। तो सच बोलना भी हो तो किसी को कष्ट नहीं, हित हो तो बोलना चाहिए, किसी का लाभ हो तो बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा तपस्या जवान की है, इससे भगवान के शास्त्र पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। कितने लोग हैं भगवत गीता पढ़ते हैं, हरे कृष्ण, क्या नाम माता जी? गीता, भगवत गीता पढ़ती है, उनका नाम है ना, वो इसलिए पढ़ती है, अच्छा है सबका नाम गीता हो, गीता पढ़ो। तो भगवत गीता गांधी जी बहुत दुख से रो के कहते थे, महात्मा गांधी जी रो के कहते थे, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, छोटा मुसलमान का बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं, छोटा ईसाई का बच्चा बाइबल पढ़ता है, लेकिन हमारे भारत के अंदर, हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बच्चों को भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती है। बड़ा दुख से रोया करते थे। इतना छोटा सा 700 श्लोक का शास्त्र है, इन बच्चों को कंठस्थ होना चाहिए, इनको ये श्लोक याद होने चाहिए। ये बच्चों को श्लोक याद कराने का मतलब ऐसे है जैसे आप लोग इधर टीका लगाते हैं, इधर होता है इम्यूनाइजेशन, होता है नहीं होता है? हाँ, हेल्थ वाले आते हैं ना, खांसी का टीका लगा बोलते हैं ना वो, हाँ, और पोलियो का लगाते हैं ना, ट्रिपल वैक्सीन देते हैं ना, पोलियो, डिप्थेरिया, ट्यूबरक्लोसिस देते हैं ना, क्यों लगाते हैं बच्चों को? कि बीमारी नहीं हो जाए, है ना? लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं? यहाँ आप लोग जाते हैं ना अस्पताल वाले, यहाँ घर आके लगा के जाते हैं? हरे कृष्णा, डिस्पेंसरी जाना पड़ता है? कोई बात नहीं, जाना पड़ता है या वो आते हैं? पहले जमाने में आते थे, स्कूलों में जबरदस्ती हमको पकड़ के लगाते थे, हमको डर लगता था, वो जबरदस्ती आके लगाते थे। पहले एक होती थी, अभी तो है नहीं, वो स्मॉल पॉक्स हुआ करती थी, माता कहते थे, वो सारा चेहरा बिगड़ जाता था। चिकन पॉक्स तो अभी है, पहले स्मॉल पॉक्स हुआ करती थी, वो तो आपने देखी नहीं। स्मॉल पॉक्स होती थी तो आदमी का चेहरा बेचारे कैसे दाने 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 हो जाते थे बहुत। हाँ, माता, उसको माता करके पूछते थे, माता हमारे घर में नहीं आना, बोलते थे माता, बोलते हमारे घर में मैं आना, कौन सी माता है घर में नहीं आने देते हो, माता नमस्कार बाहर जाओ। तो बच्चों को आप क्या बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों को टीका लगाने को? हाँ, वो तो अंग्रेजी में, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? बक्सा है, बक्सा है, बच्चों बक्सा है, बच्चों को क्या बोलेंगे? जोफा बक्सा है, हाँ, जोफा बक्सा है, जोफा फे पिकिया, ओके, जोफा फे पिकिया, ठीक है, जोफा फे पिकिया, बहुत जरूरी है ना बच्चों की रक्षा के लिए, कि बीमारी से बचाएगा, लेकिन जन्म मरण की बीमारी से तो नहीं बचाएगा ना, कि मरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस दुनिया में जो आया है उसको, और मरेगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा ना, फिर बीमार होना पड़ेगा ना, फिर जफिया चीका लगाना पड़ेगा ना। इसलिए बच्चे को जैसे टीका लगाना जरूरी है, क्या जप, क्या जफिया पिकिया, पिकिया सुई, पिकिया प्रिक प्रिक पिकिया, ओ पिकिया, जैसे बच्चे के लिए टीका लगाना जरूरी है हर मां बाप के लिए कि बच्चा बीमार ना हो, ऐसे हर मां बाप को बच्चे को गीता पढ़ानी चाहिए ताकि जन्म मरण के चक्कर से बच जाए। बहुत जरूरी है, पिकिया जरूरी है, उससे ज्यादा भगवत गीता की शिक्षा जरूरी है। वैदिक संस्कृति के अंदर आज सुबह हम पढ़ रहे थे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया, मथुरा से उसको गोकुल ले गए, अभी छठी भी नहीं, तीन दिन भी नहीं हुए थे, कंस ने पूतना नाम की एक बहुत बड़ी असुरी को भेजा, राक्षसी पूतना, और आई कैसे, बहुत सुंदर नारी का रूप धारण करके आई, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि उसको आदमी रास्ते से जा रही है देख रहे हैं उसको, और देखते देखते ऐसे खड़े हो गए, पता नहीं क्या है, दुनिया का पता नहीं, पूछ नहीं रहे कौन है कहां से आए, और स्त्रियां उसको देखें हाथ में कमल लिया हुआ है, ये तो लक्ष्मी माता कहीं से पधारी है, और लक्ष्मी को तो सबको चाहिए, लक्ष्मी आ जाए हमारे पास, लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी को सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? लक्ष्मी के तो सब पुजारी है संसार में, नहीं, पैसा लक्ष्मी तो धन लाती है ना, लक्ष्मी तो सबको चाहिए, तो माता जी बोलती है लक्ष्मी आ गई, और लोग उसको देखते बोले बहुत सुंदरी है, इसको देखने से आंखें हमारी, ओहो आनंद आ रहा है। वो पूतना नंद बागाबा के घर में घुस गई, ये नई किसी स्त्री को आप अपने घर में जाने दोगे क्या? वो घर में चली गई और सब उसको देख रही है, ओ भगवान, कोई अप्सरा आई है, कोई लक्ष्मी हमारे घर आशीर्वाद बच्चे को देने आई है, इतनी सुंदरी बन गई थी कि कि उसने जाके यशोदा को कहा, अरे तूने पहले कभी बच्चे को जन्म दिया है, भूखा है, तुम्हें पता नहीं लग रहा, इधर लाओ मैं दूध पिलाती हूं। आपका दो दिन का बच्चा हो, कोई और बाहर की स्त्री आए कहे कि मैं इसको दूध पिलाऊं, आप दोगी उसको? नहीं दोगे ना। लेकिन उसने जबरदस्ती उठा लिया, उठा के अपना स्थल उसके मुंह में घुसेड़ दिया और स्थल के ऊपर लगा हुआ था कालकूट विष। विष लगा के आई थी कि कृष्ण को मारना है, छोटे बच्चे को। लेकिन भगवान चाहे एक दिन का हो, एक साल का हो, 15 साल का हो, भगवान तो भगवान ही है। भगवान ने देखा इस राक्षसी ने बहुत से बच्चों को मारा है, अब ये पीने के लिए मुझे स्तन दे रही है तो मैं इसका प्राण भी पी लूंगा। और भगवान ने एकदम सोचा, मैं तो गोकुल में मक्खन खाने के लिए मक्खन खाऊंगा, दूध दही पीऊंगा, विष मैं थोड़ी पीऊंगा। इसका प्राण पीना, विष पीना मेरा काम नहीं है। विष पीने का काम तो भगवान शंकर के हवाले किया हुआ है। शिव भगवान को कहते हैं, इधर आओ। बोला, क्या बात है? बोला, तुम्हारा काम विष पीना है ना, जरा पी लो, मेरे को दूध पीना है। भगवान ने भगवान शंकर को बुलाया। भगवान शंकर आए, बोलो बाबा क्या बोलूं, बोलो बोलो भगवान क्या कह रहे। बोला, विष तुम्हारा पीना काम है, मैं तो यहां मासी का दूध पीऊंगा, तू विष पियो, और मारने का काम आपका है, प्रलय आपको करनी है, इसका प्राण आप निकाल लो। मार दिया भगवान ने उसका, ऐसे उसको क्या किया, ऐसे दबाया स्तन को, इतना दबाया, बोल दिया, मुच्चा मुच्चा अलम, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, बस ऐसे पुतना चिल्ला चिल्लाने लगी। और इतना छोटा सा दो दिन का बच्चा इसे खींच के दूर फेंक रही है, और बच्चे ने ऐसा पकड़ा पुतना को। भगवान कहते हैं, अरे मैं एक बार किसी को पकड़ लेता हूं फिर छोड़ता नहीं, पकड़ना तो मुझे आता है, छोड़ना किसी को आता ही नहीं है, मैं छोड़ने का काम आता ही नहीं है मेरे को, पकड़ लिया बस हो गया, अब नहीं छोड़ूंगा। एक बार भगवान पकड़ लिया तो किसी को छोड़ता नहीं है। अब पूतना ऐसे भागी, और भगवान ने कहा कि यहां से भगाओ, कहीं यहां गिर गई तो हमारा घर तोड़ देगी, ये बहुत बड़ी है, राक्षसी है, भगाओ यहां से। ले गए वो बाहर जंगल में, गए वहां पूतना को ऐसा मारा कि गिरते ही 12 मील में जाके पड़ी, 18 किलोमीटर में नीचे जा गिरी, इतनी बड़ी थी, 18 किलोमीटर में जाके गिरी, इतनी बड़ी थी। अब वही घर में गिर जाती, सारा घर नहीं गिर जाता, भगवान दूर ले गए उसको, और वहां गिरी, हजारों पेड़ों को नीचे गिरा दिया, पूतना मर गई। लेकिन भगवान को लगा कि ये बहुत अच्छा पहाड़ है, इसके ऊपर थोड़ी देर खेलते हैं, भगवान उसके ऊपर खेल रहे थे। तो गोपियां आई, पूतना को देख के डर गई, अरे ये तो बहुत सुंदर दिख रही थी, ये तो डाकनी, ये राक्षसनी, ये पिशाचनी। लेकिन ऊपर देखा कृष्ण खेल रहा है, आदमी किसी को हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो गोपियां दौड़ती हुई पूतना के शरीर के ऊपर चढ़ गई, कृष्ण को वहां से उठा के लाई, और लाकर एकदम रोहिणी माता ने, यशोदा माता ने गाय का पूंछ लिया और उस बच्चे के ऊपर ऐसे करने लगी, कृष्ण इसकी रक्षा करो, गोविंद इसकी रक्षा करो, गोपीनाथ इसकी, ऐसे करके उस बच्चे के अंग अंग के ऊपर भगवान का नाम लेकर रक्षा करने लगी। तो प्रभुपाद लिखते हैं, पुराने जमाने में वैदिक काल में ये माताएं जो हमारी सनातन धर्म की थी, उनको ये सब मंत्र आते थे, अपने बच्चे की रक्षा करते थे, उसको पिकिया की जरूरत नहीं होती थी, उनको भगवान के नाम से रक्षा की जाती थी। लिखा है कि खेलते हुए बच्चे का गोविंद रक्षा करे, सोते हुए बच्चे को अच्युत रक्षा करे, ऊपर से भगवान नारायण रक्षा करे, बाजू की रक्षा विष्णु करे, पूरा मंत्र है वो। भागवत में लिखा हुआ है कि बच्चों की रक्षा ऐसे होती थी। तो ये बहुत बड़ी विद्या थी जो हमारे घरों में पहले हुआ करती थी। और दादी माँ ऐसे गाय की पूंछ से उसको रक्षा किया, गाय की पूंछ से रक्षा किया, और गोबर से तिलक लगाया 12 जगह पे, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवाय नमः, ऐसे करके 12 नाम लेकर भगवान का रक्षा किया। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को छोटी उम्र में शिक्षा देनी चाहिए भगवान के शास्त्र की। ये शब्द भगवान, इनको उच्चारण आ जाए गीता के, आप इस लड़के को इंजीनियरिंग पढ़ा दो, 25-30-40 हजार रुपया कमाएगा और क्या करेगा, 50 हजार रुपया कमाएगा और क्या करेगा, यही कमाएगा ना, इतना ही करेगा ना। गीता का इसको 5 श्लोक याद करा के दुनिया के किसी कोने के अंदर भेज दो, ऐसे 50 लोग बैठ के इसकी कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, इसको नमस्कार करेंगे, और कुछ इसको संसार में कुछ लेने की कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा विज्ञान है ये, दो महीने से हम घूम रहे हैं, दुनिया के कोने कोने में घूमते हैं, हमें मालूम नहीं है कौन ले जाता है, कहाँ ले जाता है, कौन कहाँ खिलाएगा, कौन कुछ, हमको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, सब पहले से व्यवस्था हो गई। ये जहां मंदिर में रहते हैं ना आपके, इसको आप क्या कहते थे, हम तो इसको कहते हैं रास बिहारी प्रभु, आप क्या कहते थे?
ऋषि।
हाँ, तो ये ऋषि प्रभु आपके, रास बिहारी प्रभु जिस मंदिर में रहते हैं, उस मंदिर का 25 लाख रुपया महीने का खर्चा है। कितना? 25 लाख रुपया एक महीने का खर्चा है। और 100 भक्त रोज भोजन करते हैं सुबह दोपहर शाम, और 2,000-5,000 लोग यात्री आते हैं, उनको प्रसाद दिया जाता है निःशुल्क फ्री में। ये सब पैसा भगवान उधर भेज रहा है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि भगवान का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि भगवान की कीर्ति जा रही है, भगवान की कथा और कीर्तन जहां होगा। और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं कि जहां गाय है और जहां भगवान का नाम है, वहां कोई राक्षसी, कोई पिशाचनी, कोई दुख, कोई तकलीफ कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। भगवान का नाम मुख से लेने का आदत पड़ जाए आपकी, अगर जैसे चाय पीने की आदत पड़ गई है ना, नहीं छूटती है ना, हाँ चाय पीते हो सब लोग? नहीं, सब पीते हो? हरे कृष्ण। पहले जमाने में चाय हमारे पास नहीं थी, बूढ़े बुआ दूध बच्चों को पिलाया करते थे, दूध गाय रखते थे, दूध पिलाते थे। अरे पुराने जमाने में माता सुबह सवेले, बड़ी उम्र की माता कोई यहां बैठी है? नहीं दिख रही है कोई उस आयु की माता, एक भी नहीं दिख रही है। हरे कृष्ण। माताएं आपको याद है किसी जमाने में? छो आपने यहां देखा ही नहीं होगा। हरे कृष्ण। माता लोग 4 बजे उठा करती थी, अभी भी भारत में 4 बजे सुबह उठती हैं, और उठ के पहले पहले आटा पीसती हैं। आपने देखी है घंटी? देखिए चलाने वाली चक्की, देखिए घर में हाथ वाली, देखिए घरों में है कहीं? पहले थी जीवन जी, थी ना? थी। वो चक्की चलाती थी सुबह सुबह, ताजा आटा तैयार हो जाता था, और फिर क्या करती थी? फिर दही का मंथन करती थी और मक्खन निकाल के रखती थी, दही निकाल के रखती थी, और फिर उठ के गाय से दूध निकालती थी। बच्चे के उठने से पहले अपने हाथ से पीसे हुए आटे की रोटी बनाती थी, अपने हाथ से निकाला हुआ मक्खन उसके ऊपर रखती थी, और बच्चे को रोटी मक्खन और दही देती थी माँ, और कहती थी बेटा अब पढ़ने जा। तो बेटा उठते माँ को प्रणाम करता था, पैर छूता था, पिताजी के पैर छूता था, और पढ़ने जाता था, और गुरुजी को भी नमस्कार करता था। अब आपके बच्चे आपका चरण छूते हैं? हाँ, नहीं छूते ना? और गुरुजियों को मारते हैं कि नहीं मारते हैं स्कूल में? नहीं नहीं, मेरे पास आए थे, बोला गुरुजियों का ये हाल है कि लड़के गुरुजियों को मारते हैं, बड़े बहुत बुरा हाल है। क्यों? ये जो कल्चर था, जो मां प्रेम से बच्चे को हाथ से पका के खिलाती थी ना, उससे बच्चे और मां के बीच में बहुत एक स्नेह पैदा होता था, और वो इतना प्रेम और स्नेह होता था कि सारी जिंदगी मां की सेवा बच्चा करता था। माता पिता की सेवा पहला लक्ष्य है। मात्र जब विद्या पूरी होती तो पहले कहते हैं मात्र देवो भव, मां पूजा के योग्य है, माता की पूजा करनी चाहिए। पितृ देवो भव, पिताजी आपका पूजन है उसके प्रणाम करो। आचार्य देवो भव, जो शिक्षा देता है गुरु आपके लिए पूजन्य है। अतिथि देवो भव, जो बाहर से आ जाए उसको प्रणाम करो। ये वेद शिक्षा के बाद बच्चे को ये 4 चीजें पहले सिखाते थे। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। चारों चीजों का हमने ऐसा कचुंबर बना के, इसकी चटनी बना के फेंक दिया। माता को पूछने, माता का कहां सम्मान रह गया बेचारी का? माता कैसी होती है पता है? एक बेटा बिगड़ गया माता का, किसी वैश्या से प्रेम करने लगा। वैश्या ने कहा तेरी माता का गला काट के उसका खून मेरे को लाके दे, तब मैं तुम्हारे से प्रेम करूंगी। अंधा, काम के अंध में अपनी मां का गला काट रहा है, गले से खून बहता है, और कटा हुआ मां का गला कहता है कि बेटा खून के ऊपर कहीं तुम फिसल के गिर न जाओ, ध्यान से चलना। गला कटा हुआ मां का वो कह रहा है कि बेटा कहीं मेरे खून के ऊपर तुम्हारा पांव फिसल न जाए, गिर न जाओ। उसके बाद भी बेटे के प्रति उसकी सद्भावना है, लेकिन वैश्या के पास जाता है, वो कहता है तू अपनी मां का गला काट के आया, मेरे से कौन सा प्रेम करेगा, निकलो यहां से। मां इसका नाम है, कितनी रातें जागती है आपके सोने के सुख के लिए, अपनी नींद खराब करती है। एक रात मां जागती है उसकी कीमत सारी जिंदगी नहीं चुका सकते हो। ये कहां मर्यादाएं चली गई सारी। और शादी होने के बाद बच्चा अपनी पत्नी से इतना प्रेम करने लगता है कि मां बिचारी को छोड़ के चला जाता है। ये नहीं समझता है वो स्त्री, ये नहीं समझती कि कल उसको मां बनना है और उससे भी ऐसे ही होगा। क्यों नहीं ये बात समझ में आती है समाज को? वो मां नहीं बनेगी क्या? उसका बेटे की शादी नहीं होगी, वो भी ऐसे ही छोड़ के जाएगा? चालीस पचास साल इस जिंदगी में रहना है, वो भी 20 साल सोने में गुजर जाएंगे। अरे प्रेम से क्यों नहीं आपस में रहते हो? प्रेम से रहो, लेकिन प्रेम आपके पास तब आएगा जब आप सबका लक्ष्य एक होगा कि हम सब भगवान के हैं, हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो साथ रहना आसान हो जाएगा। साथ रहने के लिए आसान तरीका है भगवान की भक्ति करनी, तब सुख में। पुराने जमाने में हर घर के अंदर भगवान की भक्ति होती थी। कहां चला गई ये संस्कृति, कहां चली गई? हम अभी थोड़े दिन एक स्थान पे गए थे मायापुर में, एक बहुत बड़े यहां चित्र नहीं, एक दो तीन, एक नहीं आगे, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज का शिष्य था एक। वृंदावन से नवद्वीप तक 1500 किलोमीटर अपने गुरु जी को सर के ऊपर टोकरी में उठा के गया था पैदल, गुरुजन को अपने सर के ऊपर उठा के लेके गया था तीर्थ यात्रा कराने के लिए। आप श्रवण की कथा तो सुनिए ना, अपने माता पिता को कंधे के ऊपर उठा के ले गया था तीर्थ यात्रा कराने के लिए। तो गुरुजनों की माता पिता जी का जहां सम्मान नहीं होता है, वो नहीं क्यों होता है, उसका कारण यह है कि आध्यात्मिकता और भगवत भक्ति हमारे समाज से उड़ गई है, कपूर की तरह, स्प्रिट और पेट्रोल की तरह ऐसे उड़ गई है कि हमारे समाज में अब कोई संस्कार ही नहीं रह गए हैं। जब संस्कार चले जाते हैं तो आदमी धिक्कार धिक्कार करता है, एक दूसरे को दुखी कर देता है। संस्कार का मतलब है पवित्र करने की विधि। संस्कार की बहुत आवश्यकता है। हम कह रहे थे कि आप जो आज बहू है कल उसको सास बनना है। एक बहुत स्त्री अपने पति को परेशान किया कि तेरा बाप खांसता है घर में, रोज मेरे से झगड़ा करता है, नमक ज्यादा बोलता है, मिर्ची ज्यादा बोलता है, इसको घर से निकालो। बेटा मां की अपनी पत्नी की बात में आ गया, पिताजी को ले गया, बोला चलो तुम्हारे को तीर्थ यात्रा कराने ले चलता हूं, हरिद्वार ले चलता हूं, आपको गंगा दर्शन कराऊंगा। दो दिन चला, एक जंगल में पहुंचा, पिताजी को बिठाया, बोला आप पिताजी यहां बैठिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूं। बच्चा मुड़ा, बच्चा पिता हंसने लगा, अरे बेटा बोलता है आप हंस क्यों रही है मेरे पिताजी। पिता बेटे को देख के बोला बेटा मेरे बाप को भी मैं वहीं यहीं छोड़ के गया था, तुम मेरे क्या भोजन लेके आओगे मुझे मालूम है, तुम ये क्यों कर रहे हैं, मैं आज समझ रहा हूं कि मैं भी मेरे बाप को यहीं छोड़ के गया था। बेटा समझदार था, समझ गया कि मेरा बेटा भी मेरे को यहीं छोड़ के जाएगा, उस बाप को वापस लाया। अपनी पत्नी को कहा कि दुख तकलीफ थोड़ी अगर देते हैं बड़े बुजुर्ग तो उसको बर्दाश्त करने, अपने बेटे की लातें नहीं सहती हो क्या? आपका बेटा पेट में होता है तब भी लातें मारता है, उसको भी तो सहती हो कि नहीं सहती हो? बड़ा होके मारता है उसको नहीं सहती हो क्या? तो थोड़ी सी बड़े बुजुर्ग की तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो बर्दाश्त कर लो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ेगा? मुस्कुराते। और बुजुर्गों के लिए शिक्षा यह है कि अगर थोड़े बड़ी उम्र के हो जाए ना, तो घर में एक मंत्र उनके लिए है, चुप, बोलना मत, उसका नाम है चुप मंत्र। एक बाबा ऐसे झगड़ा करता था, हमारे को पूछ बताया आके कि डॉक्टर साहब बाबा बहुत झगड़ा घर में करता है। हमने बोला हमारे पास लाना है, हमारे पास दवाई है, देंगे ठीक हो जाएगा। हमने कहा ये पुड़िया खानी है बाबा, पुड़िया खाने के बाद 3 घंटे नहीं बोलना है, ये पुड़िया खानी है दवाई, फिर 3 घंटे बोलना बंद है, और 3:02 के ऊपर दूसरी पुड़िया खानी है, फिर 3 घंटे नहीं बोलना है, सोने के पहले पुड़िया खा के फिर सो जाना है। अब बाबा पुड़िया खाए और चुप बैठा है। अब तो बहू आए, बोले सुसर जी आपको क्या खाना है, चुप। तो रोटी दें, चुप। सब्जी दें, रोटी लाई। दही चाहिए, चुप। हलवा चाहिए, चुप। इतना सारा सामान आगे रखा, तो जो चाहे वो खा ले। आपको कहां सोना है, चुप। क्या पियेंगे, चुप। तो सब कुछ सामान आगे रखे, जो चाहे वो ले। अब झगड़ा खत्म हो गया, सब उसकी सेवा करने लग गए, बोलता नहीं है, सब सेवा कर रहे। हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद डॉक्टर के ने पूछा बाबा का क्या हाल है, बोला बाबा ठीक है, बोला मेरे पास लाना, गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला ठीक है, चुप। बाबा तबीयत कैसी है, चुप। डॉक्टर ने बोला ये पुड़िया मैंने दिए, मेरे से तो बात करो। बोला महाराज बहुत, डॉक्टर साहब बहुत इससे लाभ हुआ। तो बेटे ने पूछा बाबा आपने कौन सी इसको डॉक्टर साहब पुड़िया दे दी, बोला कुछ नहीं, मिश्री कूट के दिए, खाए और चुप रहे, इलाज है चुप रहने का, चुप रहेगा तो सुखी रहेगा। 60 से ऊपर आदमी जवान को चुप, जैसे हो देखता रहो, हमारा काम नहीं, हमने घर बनाया दे दिया, अब खाओ तुम्हारी मर्जी, उल्टा करो सीधा करो तुम्हारी मर्जी, तो आपको प्रेम से सुख से 2 टाइम की रोटी मिलेगी। और छोटों को बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए, थोड़ा कष्ट भोगने में कोई परेशानी नहीं है, ये तपस्या इतनी कर लेनी चाहिए। बाहर कितने धक्के खाते हैं, कितने लोगों का बाहर सुनते हैं, अपने घर में सुन लिया तो कौन सी परेशानी हो गई। लेकिन ये सब तब होगा, ये बर्दाश्त करना, इसको कहते सहन की शक्ति तब आएगी जब हमारे को भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने का मौका मिलेगा। ये साधु साधु जीवन होगा तब सबको सुखी कर सकते हो आप। इसलिए हमने यहां से कथा शुरू की थी कि जो हम संसार में शब्द बोलते हैं वो भी संसार में सुख और दुख के कारण हो सकते हैं, ऐसे भगवान का नाम आपके लिए सदा ही सुख का कारण बनेगा। तो भगवान के पवित्र नाम का नित्य प्रतिदिन जप करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, जितने यज्ञ हैं उन सब यज्ञों में मैं जप रूपी यज्ञ हूं। अब बाकी यज्ञ करने के लिए घी चाहिए, तिल चाहिए और सामान चाहिए, आग चाहिए, पंडित चाहिए, माचिस चाहिए, फिर धुआं भी होगा, खर्चा भी होगा, लेकिन फल मिले न मिले कोई पता नहीं। लेकिन इस जग में केवल जबान को चलाना है, कोई खर्चा नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई परेशान नहीं, और फल अवश्य मिलेगा। और फल क्या मिलेगा, भगवान ही मिलेगा। तो यह यज्ञ सबको करना चाहिए और नित्य करना चाहिए, रोज करना चाहिए। पुराने जमाने में हर गृहस्थी को 5 यज्ञ करने होते थे, क्योंकि 5 पाप प्रतिदिन गृहस्थी के घर में होते हैं। झाड़ू निकालते हो कितने जीव मरते हैं, आग जलाते हो कितने जीव मरते हैं, पानी भरते हो कितने जीव मरते हैं, तो इन सब के बदले में यज्ञ किया जाता था कि इन पाप से बच जाएं। तो अब ये यज्ञ किसी घर में होता नहीं है। अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ये यज्ञ पहले करने पड़ते थे, अब ये नहीं हो रहा है। इसलिए एक यज्ञ भगवान ने भगवत गीता में बताया जो सब अपने घर में सब समय हर एक आदमी कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उच्चारण करना है, एक सुमरणी एक माला लेनी है और इसके ऊपर भगवान के नाम का उच्चारण करना है, ये यज्ञ हो गया आपका। और 5-6 मिनट लगते हैं एक माला जपने में, 10 मिनट हम नहीं निकाल सकते हैं अपने कल्याण के लिए कि हम सब पाप से बच जाएं और हम सुख से अपने घर में रहें, हमारे अंदर सहनशीलता आ जाए, इसके लिए हम 10-12 मिनट नहीं निकाल सकते। और जाते हैं कहीं बिल भरने के लिए, बिजली निकाल लाइन में 1 घंटा खड़ा होना है तो खड़े होते, बिल भरने जाओ खड़ा होता है, बस के लिए जाओ बस नहीं आती है तो बस के लिए 15 मिनट खड़े रहेंगे, लाल बत्ती ट्रैफिक में आ जाएगी कहीं फंस जाएंगे तो 1/2 घंटा खड़े हो सकते हो। और भगवान किसी को दुख न दे, बीमार हो तो अस्पताल में 10 दिन पड़े रहोगे तब सबका टाइम निकल आता है, लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो। जिस चीज से लिए सुख मिलता है वो सुख क्यों नहीं हम करते कि दुख ही नहीं हो। ये तो सुना है कहावत पुरानी, दुख में समरे सब कोई, सुख में समरे न कोए, जे सुख में समरे तो दुख काहे को होए। दुख में तो सब भगवान की पूजा करते हैं, कष्ट आ गया है भगवान कृपा करो, लेकिन सुख में करे तो दुख आएगा ही क्यों। एक कहावत है कि सुबह सवेरे उठ के स्नान करने से पानी जैसे गिरेगा ना शरीर के ऊपर, शरीर में बिजली पैदा होती है, तो आदमी का जो 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 सुस्ती होती है, सुस्ती बोलते हो क्या बोलते हो उसको, लेजीनेस क्या बोलते हैं, पागस, स्नान करोगे पागस भाग जाएगा, पागस नहीं रहेगा, क्यों, पानी गिरेगा ना, बिजली वो पानी गिरने से बिजली पैदा होती है शरीर में, एकदम फुर्ती आ जाती है, पागस भाग जाता है। लेकिन इतने आदमी पागल है कि स्नान ही नहीं करते, पागस भगाने के लिए स्नान करना चाहिए, लेकिन आदमी इतने पागल हो गए स्नान ही नहीं करता। किसी ने बोला स्नान नहीं करता है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास, हमने बोला जितने ये निकले हैं सेंट पाउडर, ये सिर्फ इस बात का परिणाम है कि लोगों को स्नान करना भूल गए, इतना अंदर मैल हो गया कि बहुत अच्छा है, अरे पानी से स्नान तो किया नहीं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने स्नान करना भुला दिए। और जिससे पागस जाएगा, हाँ पागेश भगाने के लिए स्नान करना जरूरी है, और उसी पागेश को ही स्नान करने में पागेश करते हैं। स्नान को क्या बोलते हैं, स्नान को भैया भैया पगेश भगाएगा भैया बैये बैये पगेश भगाएगा, पगेश को बैये भगाएगा, और लेकिन हम बैये करने में ही पगेश करते हैं। ऐसे भगवान का नाम लेने से दुख चला जाएगा, भगवान का नाम लेने से दुख चला जाएगा, लेकिन हम भगवान का नाम लेने में दुख समझते हैं कि बड़ा दुख है, कौन बैठेगा, अरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहुत परेशान है, कौन करेगा ये काम, वही दुख जिससे भगाना है वो उसी को समझते हैं ये दुख है। इसको बोलते हैं तमोगुण, इसको तमोगुण बोलते हैं कि जो सुख देने वाली चीज है उसको हम करने में समझते हैं बड़ा कष्ट, और ये करना इतना आसान नहीं है। भगवान का नाम जबान के आए ये हर एक के बस की बात नहीं है, ये तो बहुत कोटि तपस्या पुराने जन्मों ने किया है। अच्छा कोई संग मिल गया तो भगवान का नाम मुख में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक बाबा जी महाराज सबको कहता था भगवान का नाम जपो, जा रहा था रास्ते में देखा ये कलर करते हैं ना, मैकेनिक जो मिस्त्री होते हैं जगह बनाते हैं, वो बैठे हुए थे, 11 बज गए थे। बोला आप आज काम पे नहीं गए? बोला आज हमारे को डंडा नहीं मिला। बोला फिर बोला पैसा आज नहीं आएगा, भूख घर में तो रोज कमाते हैं खाते हैं। महाराज को दया आ गई, बोला चलो हमारे आश्रम में। आश्रम में पहुंचे तो 11:30-12 बज गए, तो प्रसाद तैयार था, भोजन पड़ा था तैयार। बोला आप ऐसे करो भोजन खा लो, तो खा लिया। भगवान का भोग लगा था, हलवा था, पूरी थी, सब्जी थी, दाल थी, पकौड़ा था, बहुत खाया मौज में। बोला आप कितना लेते हैं रोज को काम करने का? बोला 200 रुपया महाराज हमारा मजदूरी है। बोला आधा दिन तो खत्म हो गया? बोला हाँ। बोला आधा दिन के 100 रुपया लो, 100 रुपया दे दिया। बोला अब क्या करें महाराज? महाराज ने माला उठा के सबको दी, बोला यहां बैठ के माला जपो। आप हलवा पूरी खाया था, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, महाराज बोलते अरे भाई काम करो ना, पैसा लिया है तो तुम्हारे को मजदूर। आप घर में किसी को 200 रुपये दे बुलाओ, वो ये रंग नहीं करे और बैठ के इधर बीड़ी पी बातें करे, आप क्या बोलोगे? अरे भाई काम करो, पैसा लेता है, बोलते है नहीं बोलते उसको? हा? और यहां पैसा आपसे लेगा और वहां बैठा रहे बाहर के मतलब में काम नहीं करो तो क्या करोगे? सो जाए तो सोने दोगे क्या उसको? नहीं दोगे ना। महाराज बोले भाई तुम जप करो ना। हाँ महाराज, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम राम राम, फिर 100 रुपये को देता है। अरे थोड़ी देर में फिर महाराज कहता है अरे भाई जप करो। उठ के बोलता है महाराज 100 रुपया अपना वापस ले लो, मैंने भोजन किया प्रसाद खाया वो तो माफ करो, ए रंग करना है तो कर दूंगा, भले मेरे मुंह के ऊपर गिरेगा मैं काला हो जाऊं मुंह। ये राम राम हमसे नहीं होता है। तो ऐसे ये बहुत मुश्किल काम है। कोई वीर पुरुष होता है, कोई धीर पुरुष होता है, वो ये काम कर सकता है, हर एक नहीं कर सकता है। इसलिए पुराने जमाने में कहते थे जननी वो जो जने, या दाता या सूरवीर या धर्म या कोई भक्त पैदा करे, नहीं तो इससे बांझ वाली। पुराने जमाने में कहते थे माता वो, या तो कोई धर्मात्मा पैदा करे जो दुनिया को में भगवान का नाम ले, या तो कोई वीर पुरुष हो जो देश की रक्षा करे, नहीं तो दाता हो जो किसी का दान दे, नहीं तो बेकार में इस दुनिया के अंदर ऐसे गधे बिल्ले की तरह आदमी पैदा करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इसकी? इतने सारे पैदा हो गए क्या कर रहे हैं? मुसीबत ही पैदा किए और क्या क्या पैदा किए? तो जननी को तो उसको कहते हैं जिसका पुत्र ऐसा जैसे भाग्यशाली है, इसकी मां जैसा एक भक्त पैदा किया कि आपके इस एरिया में 3-4 बार भगवान का सत्संग हो गया, इतने लोगों ने भगवान का नाम सुना, ये तो भाग्यशाली है। तो जन्मों का पुण्य होता है तब ऐसा वातावरण होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जीवन जी का और परिवार का और गीता माता जी का, कि आप लोगों ने भगवान की कथा सुनी, भगवान का कीर्तन किया। यही सुख का साधन है, यही सनातन धर्म का संदेश है। आप भगवान का नाम अपने घर में जपने का नेम बनाइए। दिया जलाना, अगरबत्ती करना, ये तो ठीक है, लेकिन उससे इतनी पवित्रता नहीं आएगी जितनी आपके नाम जपने के ऐसे आपके अंदर। अगरबत्ती करने से घर में सुगंध होगी, लेकिन नाम जपने से अंदर में सुगंध होगी, अंदर पवित्र होगा, हृदय में दूसरों के लिए जगह पैदा होगी, दूसरों को सुख देने की भावना होगी। तो ये बाह्य कर्म है, अगरबत्ती करना, दीप करना, ये बाह्य कर्म है, जप करना ये अंदर का कर्म है। तो घर को साफ करने के लिए ये भी जरूरी है, अगरबत्ती करो, धूप करो, लेकिन नाम जपोगे तो अंदर पवित्र होगा। तो अगर अंदर पवित्र करना है तो भगवान के नाम जपने का नियम बना लीजिए। आप लोगों को माला लाना चाहिए, इनको देना चाहिए, इससे भी एक माला जपो हमारे साथ और फिर ये अपने घर में जाके जपा करो, ये हमारे को करना चाहिए। धन्यवाद, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? आप लोग सब इतनी ठंडी में बाहर बैठे सुना, आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा।